शांति। एक गरीब व्यक्ति ने इतना कर्ज ले लिया कि वो अब उसे चुका नहीं पा रहा था और कर्जदार उसे बहुत परेशान कर रहे थे, तो उसने खुदकुशी कर ली, मर गया। अब वो सारे कर्जदार उसकी पत्नी को परेशान करने लगे, रोज आने लगे, और वो पत्नी भी बहुत परेशान होने लगी। और उनका एक लड़का था, तो रोज कर्जदारों को क्या जवाब दे उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। और वो बीमार रहने लगी, और जब उसे लगा कि अब मेरा भी अंत नजदीक है, तो उसने, उसके पास एक ही धरोहर थी पूर्वजों की, उसके कुल की धाती, एक बहुत अमूल्य मणि था। तो उसने उस मणि को लिया, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इसको बेचूं। उसका जो बेटा था और एक कोट था, उस कोट के आस्तीन में उसको सी दिया, स्लीव में उसको सी दिया, और कुछ ही समय में उसका भी देहांत हो गया। अब वो लड़का अकेला रह गया, अनाथ, मजदूरी करने लगा, यहाँ वहाँ धक्के खाने लगा, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करने लगा, कई अलग अलग प्रकार के कार्य करने लगा। और एक बार जंगल जाता है लकड़ी तोड़ने के लिए, और लकड़ी जब तोड़ते रहता है तो अचानक उसका जो कोट होता है वो झाड़ियों में फंसता है, और जैसे ही फंसता है उसे निकालने की कोशिश करता है, और जब नहीं निकालता है तो जोर से खींचता है, और अचानक से वो मणि गिरता है। और जैसे ही वो मणि गिरता है और जैसे ही वो पाता है, उसका जीवन बदल जाता है। अब तक की जो दरिद्रता विपन्नता थी वो सारी रूपांतरित हो जाती है। वो हीरा उसी, वो मणि उसी के पास था कई समय से, कई वर्षों तक इसी तरह से वो काम करते रहता है गरीब, क्योंकि उसको भी सारा कर्जा चुकाना था, पर उसे ये पता नहीं था कि वो मणि उसी के पास था। ये कहानी वेदांत में सुनाई जाती है कि तुम एक बहुमूल्य खजाना लेकर ही जन्म लिए हो, कहीं और से खजाना लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे पास पहले से ही है, केवल उसको जानना है। वो दुखी था जबकि खजाना उसी के आस्तीन में था, वो भटक रहा था, रो रहा था, पर खजाना वही था। और जिस दिन उसे उस खजाने का पता चलता है, उसका जीवन बदल जाता है। जिस दिन उसे यह पता चल जाता है कि मैं गरीब नहीं हूं अब, तो हमारे पास कौन सा खजाना है? असंख्य खजाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा है मुरली में संडे की चौथे जो महावाक्य है उसमें, कि इस संसार के आकर्षण से मुक्त होने का क्या उपाय है, क्या विधि है। दो बातें बताई। ये संसार का आकर्षण खींचते रहता है संसार, कल भी कहा गृहस्थ में रहते आसक्ति ना हो, मोह निद्रा है। ये क्या है? मोह निद्रा। खींचती रहती है कोई ना कोई चीज, आसक्त करती रहती है, कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई प्रलोभन, आसक्ति है, मोह है, लगाव है, लागत बाबा की भाषा में अटैचमेंट। ये सब खींचते रहता है आत्मा को। जैसे आत्मा संसार में आती है सारे आकर्षण चालू हो जाते हैं। ये संसार, ये आत्मा, आत्मा इन सभी आकर्षणों से कैसे मुक्त हो, ये बाबा का प्रश्न है। उत्तर दो दिए। पहला ये जान लो कि तुमने क्या पाया है। तुम मालिक हो, तुम अधिकारी हो, सारे खजाने तुम्हारे पास है। इन खजानों के आगे संसार का खजाना कुछ भी नहीं है। इन खजानों के आगे संसार की प्राप्ति गौण है। ईश्वरीय प्राप्तियों के आगे संसार की प्राप्ति अव्यर्थ है। जिन्होंने इन प्राप्तियों को पा लिया, जो इन प्राप्तियों में रहता है, उसके लिए संसार से वैराग उत्पन्न हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार से स्वतः ही वैराग हो जाएगा। शायद हम अपनी प्राप्तियों का चिंतन कम कर रहे हैं, अपने भाग्य का चिंतन कम कर रहे हैं, अपने खजानों का चिंतन कम कर रहे हैं। हम मालिक है, खजांची कल की मुरली में था शब्द। हमारे पास इतना ढेर खजाना है, ट्रेजरर हम है। मालिक भी है और ट्रेजरर भी है, दोनों है। मालिक भी और खजाने की देखभाल करने वाले भी हम हैं। तो अपने खजानों को याद करते रहना है। इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा ज्ञान, चटपटा, खटपटा और अटपटा, टेस्टी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और ट्रिकी भी है, तीनों चीजें हैं। ऐसा ज्ञान बाबा ने दिया, ऐसा योग सिखाया है जो जिसमें तलवार की धार है, जो सारे विकर्मों को, सारे पाप को, सारे कुकर्म को, सारे विकारों को, सारे व्यर्थ को, सारे निगेटिव को भस्म कर सकता है। इतनी उसमें शक्ति है। तो ये कितने सारे खजाने, योग का खजाना है हमारे पास। ज्ञान का तो सुना है, योग का खजाना, योग भी खजाना है। कभी कभी बाबा ने प्रयोग किया ये शब्द योग के लिए, बहुत कम, कि योग भी तुम्हारे पास, प्राचीन योग जो कि लुप्त प्राय हो चुका था, अब बाप आए हैं फिर से तुमको ये समझाने। राजाओं का राजा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षम वगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, इससे ऊंचा कुछ ज्ञान है ही नहीं। न ही ज्ञान है न सदृश पवित्र। ये ज्ञान इतना पवित्र है कि पवित्र को पवित्र कर दे, आंख को पवित्र कर दे, इतना ये पवित्र ज्ञान है। आंख सबको पवित्र करती है और ये ज्ञान आंख को पवित्र करता है, अर्थात पांच तत्वों को। इसके लिए पांच तत्वों में से तीन तत्वों का देवता रूप में गायन है, वायुदेव, अग्निदेव और इंद्र। धरती को मां कहा और आकाश को, तो उनका देव रूप में गायन नहीं है। मां और आकाश को कोई कोई पिता कहते हैं। पवन और आकाश अलग है, आकाश की उपमा दी जाती है। तो हमारे पास खजाना है, कहां पर है? पर्स में, आस्तीन में, बैग में, बुद्धि में। इस खजाने का निरंतर चिंतन करते रहना। इतना श्रेष्ठ ज्ञान, उसकी एक एक लाइन, एक एक बात कितनी गहरी है। बाबा ने कहा है कि महारथी भी गिने चुने हैं आज की मुरली में। महारथी भी बहुत गिने चुने, महारथी भी का भी टाइम किस में वेस्ट हो रहा है? देह रूप, देह नाम और रूप में, ना रूप में फंसने से चलायमान होती है बुद्धि। किसी का रूप ही अच्छा लगता है और किसी का नाम बड़ा है, उससे दोस्ती करने की इच्छा है क्योंकि नाम है, उसमें फंस जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा बाबा ने कि संसार से अनासक्त होने की विधि क्या है। तो सबसे पहले अपने खजाने को याद करो। और दूसरी विधि है स्मृति। कौन सी स्मृति? मैं और बाबा, बस। इसमें कोई भी नहीं आना चाहिए, चाहे कितना भी गुणवान हो, कितना भी सुकुमार सुशील कुमार हो, कितनी ही 36 लक्षणों वाली कुमारी हो। कुमारियों का गायन है 36 लक्षणों वाली कुमारी, जैसे कुंती जो थी ना, वो जो दुर्वासा ऋषि की उसने पूजा की या सेवा की। क्यों चुना कुंती को? क्योंकि उसने देखते ही कुंती को कहा कि ये कुमारी 36 लक्षणों वाली कुमारी है, और ये महारथियों की मां बनेगी, इसके लिए यही चाहिए। उसने चुना उसको, फिर उसने उसकी सेवाएं की, फिर उसने उसको जाते समय वरदान दे दिया कि तुम जिसको भी बुलाओगी एट योर बिहेस्ट वो आ जाएगा। तो कोई भी हो, चाहे 36 लक्षणों वाली कुमारी हो, चाहे सर्वगुण संपन्न सुशील कुमार हो, मैं और बाबा आए और बी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कोई आया तो तीसरा नेत्र बंद, एक बाप दूसरा मैं, तीसरा कोई आया तो तीसरा नेत्र बंद, तलवार हमेशा साथ रखनी है। कोई आया तो इसके लिए तो तलवार को भी तो संभालना होता है तो ये दूसरी विधि है। कितनी छोटी विधि है, पर कितना रहस्य, कितना राज इसमें समाया हुआ है। क्या ये हो सकता है? क्या ये जीवन भर की साधना है कि हमारे और उसके बीच में कोई ना आए? चाहे कितने भी अच्छे अच्छे नाम हम दे दो, ये सेवा का साथी है, ये मित्र है, ये स्पिरिचुअल फ्रेंड है, ये रूहानी मैत्री है हमारी, स्पिरिचुअल हमारी फ्रेंडशिप है, हम साथ सेवा करते हैं, कुछ भी हो। आज कहा आशिक माशुक, भाई भाई को भाई का साक्षात्कार, बहन को बहन का साक्षात्कार। आज की मुरली ये आशुक है, परंतु ये वहां पर भक्त प्यार के आंसू बहाते हैं, पर यहां ज्ञान की बात है, वो है भक्ति की बात। अपने माशुक की के प्यार में आंसू बहाओ। आंसू क्यों नहीं आते? क्यों सूख गए आंसू? तो बाबा इधर और मैं इधर, इसके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। कोई आया कि वो भाग जाएगा दूर, उसको पसंद नहीं है, कोई दूसरा आना। जेलसी वाला, बहुत जलन है उसको। हाय थाई लॉर्ड थाई गॉड आई एम अ जेलस गॉड, बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं मैं। वो कौन सी मुरली थी? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अव्यक्तवाणी है ना। जब बाप देखते हैं कि बच्चे किसी और का हाथ पकड़ के जा रहे, बीवी किसी और का हाथ पकड़ के जा रही है, तो मियां तो बाबा है ना, उसको जलन होती है, उसको बहुत ही दर्द फील होता है। तो ये दो विधि है संसार से अनासक्त होने की, उसको पकड़ लो और उसके खजाने का चिंतन करो। ये संसार आज है कल नहीं है, संसार के लोगों का क्या भरोसा? कोई कहेगा कि मैं तुम्हें जीवन भर साथ देता हूं और जरूरत के समय मोबाइल स्विच ऑफ। तो ये दो बातें थी चार नंबर महावाक्य में। तीन नंबर महावाक्य, बाबा के समीप रत्न कौन है? तीन उत्तर है। बाप के समीप रत्नों की क्या निशानी है? इधर उधर का नहीं बताना है, मुरली का बताना है, हफ्ते भर का मत बताओ। जो सत के संग में है, अर्थात जो सत के संग की निशानी है रूहानियत, तो सबसे पहली निशानी है रूहानियत, दूसरी निशानी है रूहानी स्थिति, और तीसरी निशानी है रूहानी मस्ती। तो रूहानी स्थिति अर्थात कमाल बताइए इसमें, एक कौन सी कमाल है वो नरेश भाई? जो दिखता है उसको देखना ही नहीं है, और जो नहीं दिखता है उसको देखना है, ये है कमाल, ये है उल्टा काम। इसलिए तो अटपटा खटपटा चटपटा, जो दिखता है इतना बड़ा दिख रहा है उसको देखना ही नहीं, और जो दिखता ही नहीं कहीं, अदृश्य है जो, उसको देखना है, ये बोल दिया। कैसा काम है जो दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे भी देखो तो भी नहीं दिखता, शरीर ही दिखता है, जो दिखता है उसको देखना ही नहीं है, और जो दिखता नहीं है उसको देखना है, यह है कमाल, यह है रूहानी स्थिति। तो रूहानी स्थिति, तीसरा बताया रूहानी मस्ती। इसी रूहानी इंटॉक्सिकेशन मस्ती में, नशे में, खुमारी में, इलाही मस्ती में, रूहानी खुमारी में, खुमार में रहना। और पहला बताया सत्य के संग का रंग, और सत्य के संग का रंग है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। ये तीन अवस्थाओं में जो रहते हैं वो बाप के समीप है। अब इसके विरोध में जो है वो बाप के समीप नहीं है। रूहानियत के विरोध में क्या है? दैहिक स्मरण, जिस्मानियत, जिस्मानी चीजें याद रखना, जिस्म की याद आना, सोचते रहना उसके बारे में। एक दूसरा, जो दिखता है उसको देखना और जो दिखता नहीं उसको नहीं देखना। नेचुरली संसार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, पर ज्ञान की दृष्टि से यह रूहानी स्थिति नहीं है, जिस्मानी स्थिति है। देह दिख रहा है, देह को देखना। चंडिका देवी का क्या परिभाषा दी आज की मुरली में महेंद्र भाई? हाँ नहीं, चंडिका देवी की परिभाषा दी है? ना ना, वो सब नहीं दिया है, कुछ और दिया है। रजिस्टर, पोता मेल, चार्ट न लिखने वाले। रूहानी मस्ती एक है, जिस्मानी मस्ती है। जिस्मानी मस्ती क्या होती है? दैहिक सुख, दैहिक भोग। हाँ, इधर उधर पिकनिक भले करो पर वो स्पिरिचुअल पिकनिक हो। सब कुछ करो पर वो स्पिरिचुअल पिकनिक हो। अगर वो पिकनिक है, एक्सकर्शन है, आउटिंग है, घूमना फिरना जाना है, उसमें ज्ञान की चर्चा हो जाते समय, बीच में बैठकर योग हो, योग में भोजन हो, क्योंकि पिकनिक में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, होती है अलौकिक पर वो लौकिक बन जाती है। अलौकिक पिकनिक लौकिक में परिवर्तन हो जाती है, अलौकिक जन्मदिन लौकिक में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमारी अलौकिक मस्ती है, हमारी जिस्मानी मस्ती नहीं है, दैहिक मस्ती नहीं है, बॉडीली इंटॉक्सिकेशन नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये दो प्रश्न है। पहला प्रश्न बताया संसार के आकर्षण से दूर कैसे हो जाए, दो उत्तर खजाना और मैं और बाबा, ये स्मृति, और इसमें नशा, एक नशा निश्चय और निशाना, उसमें ही वो कहा है, वो जो पहला प्रश्न है उसमें बाबा ने ये भी कहा है, नशा होना चाहिए तुमको अलौकिक संपत्ति का, और जब नशा याद रहेगा तो निशाना भी सामने रहेगा, और निशाना है देवता और फरिश्ता। और इसमें कहा ये तीन बातें, रूहानियत, रूहानी स्थिति और रूहानी मस्ती। तो ये आज की जो अव्यक्तवाणी है उसमें से ये कुछ बातें थी। अच्छा, ओम शांति।
बाबा प्यार से वरदान बांटे, करते हैं माला माल, करते हैं माला माल, स्नेह भरी दृष्टि से करते, स्नेह भरी दृष्टि से करते, आत्मा को वो निहाल, करते हैं माला माल। बाबा प्यार से वरदान बांटे, बाबा प्यार से वरदान बांटे, करते हैं माला माल, करते हैं माला माल। शक्ति से भरे भंडार, गुण बरसाए सुख अपार, खुशियां दे अपरम अपार, निराकार सबका आधार, अधरों पे सबके उनकी महिमा, अधरों पे सबके उनकी महिमा, वाह क्या कर दी कमाल, करते हैं माला माल। वरदान बांटे, बाबा प्यार से वरदान बांटे, करते हैं माला।